गीता ने व्याख्या की, तामसी कर्म, राजसी कर्म और सात्विक कर्म। यतो कामपेशो कर्म संहार कारण वा पुनः क्रेते बहुलायासम तद्राज समुद्र हुतम। 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किए जाते हैं वह राजसी कर्म है। यश के लिए और भोग के लिए करते हैं तो उनको थकान भी नहीं मिलती। तुलसी को तो पानी से सींचने में उनको परिश्रम पड़ता है, लेकिन अंगूर के पौधे को दूध से सींचने को कोई कह दे तो सींच देंगे, क्योंकि अंगूर मिलेंगे और पैसे मिलेंगे। दान पुण्य करने को तो चवनी नहीं निकलती है, लेकिन भाई पगड़ी देने के लिए 10 लाख की दुकान लेने में देर नहीं करते, क्योंकि आमदनी होगी। ये राजस कर्म है। सत्संग में जाने के लिए तो फुर्सत नहीं है, लेकिन दुकान पे तो रात को 10 बजे तक भी बैठ गए तो हरकत नहीं, क्योंकि नफा होगा, दिवाली के दिन है। ये राजसी आदमी की पहचान है कि दिखने वाले लाभ में ही अपना समय शक्ति धन लगा दे, वो राजसी आदमी। जिसको वाहवाही का स्वाद आता है वो बुढ़ापे की थकान को और कर्मों के थकान को वाहवाही के सुख में भूल जाता है। मंत्री महोदय 70 साल के हो गए, 72 साल के, और चुनाव के लिए भागा दौड़ी कर रहे, क्योंकि वाहवाही के रस के आगे बुढ़ापे की थकान ज्यादा महसूस नहीं होती। अगर वाहवाही की जगह पर उनकी थोड़ी निंदा हो जाए तो वो टूट जाएंगे। जीत की जगह पर हार आ जाए तो उनको फिर रस नहीं आएगा, फिर वो बापूजी के पास आएंगे और बापूजी बोलेंगे फिर से आप मंत्री बनो, और बोले बापूजी ने बोल दिया तो फिर मन बन गए और रस आने लगा तो उद्घाटन करने लगे, और देश परदेश की यात्रा भी उनको थकाएगी नहीं, क्योंकि उनकी वाहवाही में रस की बुद्धि है। तो जिस व्यक्ति को जहां से रस आता है वहां फिर थकान परिश्रम का महत्व नहीं रहता। तो जीवन की मांग है रस और शांति। राजसी आदमी को रस वाहवाही से रस आएगा, भोगों से रस आएगा, लेकिन देर सवेर वो बेचारा संसार से हार जाएगा, थक कर चला जाएगा, क्योंकि सदा शरीर रहेगा नहीं, सदा वाहवाही रहेगी नहीं, सदा भोग रहेंगे नहीं। इससे भी गए बीते तामसी लोक है, गीता कहती है अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेक्ष च पौरुषम मोहाद आरंभते कर्मा यत तामसम उच्यते। 18वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो कर्म परिणाम में हानि हिंसा और सामर्थ्य को देखे बिना किए जाते, ये काम करने के पहले सोचना चाहिए कि ये काम मेरे करने योग्य है कि नहीं, और मेरे उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं। संकल्प सम्यक प्रकार की कल्पना करके काम करना चाहिए। लेकिन जो तामसी है, किसी ने बता दिया कि अरे भाई लॉटरी ले ले और हो जाएगा मालदार, फलाने को लगी, डिंगने को लगी, अखबार में देख लिया, शेयर बाजार के शेयर खरीद ले, टीवी में देख लिया और दमादम शेयर खरीदे और रातों रात अमीर होने के बहाने फिर 2-4 महीने में कंगाल हो गए। बुद्धि में तमस छाया है, तमस के कारण बड़े घाटे सहने पड़ते मध्यम वर्गियों को भी बिचारों को। तो बुद्धि का तमस हटे वो मैंने दीक्षा में प्रयोग चालू कर दिया कि कोई साधकों को ठग न जाए प्रचार प्रसार के माध्यम से। इसलिए आजकल दीक्षा देने में 20 से 25 प्राणायाम वो कराते ताकि बुद्धि का तमस दूर हो और आपको ठीक दिखे। 20 से 25 प्राणायाम वो करवाते जिससे आपकी स्मृति ठीक रहे, और 5 से 7 प्राणायाम वो कराते जिससे आपका मन और मति मजबूत रहे, आपको कोई खरीद न ले, आप दुनिया में आए और फिर चदरिया को ज्यों की त्यों धर के मुक्त हो जाए, ऐसा दीक्षा में प्रयोग चालू कर देना। मैं भी बहुत स्याना हो गया हूं आजकल, जैसा जैसा देखता हूं वातावरण ऐसा ऐसा फिर उनकी भलाई के लिए सोचता हूं तो भगवान बड़ी सब प्रेरणा देते हैं, मैं बड़ा चालाक हो गया हूं। जय राम जी की। अगर अहंकार से बोलता मैं चालाक हो गया हूं तो आपके चेहरे पर और आपके दिल पर ठोकर लगती, लेकिन स्वाभाविक निर्दोषता से बोलते हैं तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है, दिल में गुदगुदियां होती है, हां बोल दो। हकीकत में तो ये तो अहंकार की भाषा है, लेकिन राजस है तो अहंकार हो जाएगा, लेकिन शुभ भाव से निर्दोषता से सत्व से बोलते हो तो अपने लिए और औरों के लिए सद प्रेरणा हो जाएगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी शिष्य में जो सद्गुण चाहिए, संयम, क्षमा, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, गुरु आज्ञा पालन, ये शिष्य में जो सद्गुण चाहिए राम जी तुम में है, और गुरु में जो सामर्थ्य चाहिए वो मैं समर्थ गुरु हूं। वो शिष्य जी कहते राम जी के आगे मैं समर्थ गुरु हूं, मेरा जिन्होंने संग किया मैंने उनको आनंदित कर दिया। राम जी शिष्य के सद्गुण तुम में है और मैं समर्थ गुरु हूं, काम बन जाएगा, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज, कितना बड़ा अहंकार है, सारे धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण आ जा, ये श्री कृष्ण कह रहे। कृष्ण मर्यादा का कैसा कैसा पालन करते, युधिष्ठिर आते तो कृष्ण उठ के खड़े हो जाते, जब कहीं जाना होता तो युधिष्ठिर, भीम और कृष्ण, तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पीछे चलते, क्योंकि राजा दी राज है, हम यहां के मेहमान, भीम के पीछे पीछे चलते और फिर युद्ध के रथ पर कहते हैं, और वहां चतुर्भुजी होकर युद्ध का रथ संभाला था। अर्जुन को जब विश्वरूप का दर्शन कराया तो अर्जुन घबराए और बोले कि हे केशव चतुर्भुजी हो जाओ, ये विश्वरूप से मुझे भय लगता। तो कृष्ण कभी दुभुजी हो जाते, चतुर्भुजी हो जाते, ऐसा ऐश्वर्य दिखाने वाले कृष्ण, भीम आते युधिष्ठिर आते तो उठ खड़े हो जाते, विनय भी कृष्ण में पूरा है और अहंकार भी कृष्ण में पूरा है। तामसी और राजसी अहंकार तबाही कर देता है, लेकिन आत्मिक अहंकार तो तार देता है दूसरों को भी। कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण आ जाओ, मैं क्षत्रिय हूं, भीष्म पितामह हमारे ये लगते हैं, फलाने हमारे ये लगते हैं, मैं इनका वो लगता हूं, ये वो होगा, स्त्रियों के पति चल जाएंगे तो वर्ण शंकर संतान पैदा होगी, पितरों को अर्घ्य कैसे पहुंचेगा, श्राद्ध कैसे पहुंचेगा, ये सारा पचड़ा तू छोड़ दे, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझ एक की शरण आ जा, अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता न कर, मुक्त कर दूं। तो राजसी कर्म तामसी कर्म कर्ता को बांधते हैं, करने की शक्ति सबके पास है, जीवन भर किया इधर किया लेकिन राजसी काम किए, थक गए, रिटायर हो गए, हाथ कुछ नहीं लगा, वाहवाही के दिन थोड़ी वाहवाही हो गई, अभी खाली मन को बहला दो, दो बहुए हैं, तीन दुकानें हैं, बेटों को दे दिया, मैं सब छोड़ दिया, निवृत्त हो गया, लेकिन जीवन में अभी आत्मा का रस आया नहीं भैया, परमात्मा में विश्रांति मिली नहीं, अभी कसरत करना बाकी है, अभी बापू के पास आना जरूरी है, तो कर्ता को कर्म करने में सावधान होना चाहिए। करने की शक्ति सब में है, मानने की शक्ति सब में है, जानने की शक्ति सब में है, तो आप कर्म राजस कर्म तामस कर्म से बचाकर सात्विक कर्म करो, उस राजा की नहीं कि राज करते करते परमात्मा को पा ले, मैं उसकी कथा बताऊंगा। तामसी कर्ता की कथा समझ लो, तामसी कर्ता क्या करता है, कर्म आरंभ तो कर लेगा लेकिन विघ्न बाधा और भय आएगा तो दूसरे पर डाल देगा और खुद खिसक जाएगा। राजसी कर्ता जूझेगा, दूसरे पर दोष आरोपेगा, सफलता होगा तो मैंने किया, केस जीत गए तो वकील बोलेगा देखो मैं बोलता था ना, अरे ये क्या होता है, वैसे तो मैंने कई केस, हार गए तो बोले आजकल जमाना ऐसा है जज की दिमाग में बात बैठी नहीं। बेटा हो गया तो नर्स कहती देख मैं बोलती थी ना हो गया ना बेटा, देखो हो गया ना, और बेटी हुई तो बोले क्या करें बहन जी भगवान की मर्जी। केस जीत गए तो वकील बोलता है देखो मैंने बोला था ना, हार गए बोले भगवान की मर्जी, दे भगवान के माथे पर मटलियां फोड़ते रहो। कैसा बेईमान है तामसी और राजसी करता। सफलता हुई तो मैंने की, अपन के मैंने बोला था, और विफलता है तो बोले क्या करें भाग्य की बात है भगवान की मर्जी, भगवान ने किया। तो राजसी और तामसी करता भगवान को भी नहीं छोड़ते। जयराम देखिए भगवान से भी दगाबाजी कर लेंगे। हम कभी कभार कहीं जाते हैं, लोग बोलते फलाना मंदिर है मंदिर, चलो भाई कर लिया, हमको तो पता है कि भगवान अब कितने दूर है हम जानते हैं, लेकिन मंदिर में गए परंपरा का निर्वाह करना है उन्हों कर लिया। फिर मेरे साथ वाले जो सेवक है उसको बोलता हूं मैं दक्षिण, तो जब किसी महाराज को देते बोले नहीं 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 यहां रख दो ठाकुर जी के पास। अब हमको पता है कि ठाकुर जी के पास रखवा कर भी तुम ही तो लोगे भाई। जयराम जी की रास्ते में नंगे पैर साधु लोग यात्रा कर रहे थे, मुंह पे पट्टी बांधी। तो हमारा स्वभाव है कोई तपस्वी है कोई संत है कोई है तो हम उनको यथा योग्य सम्मानित करते। हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा महाराज फल फूल है, बोले हम नहीं लेते। मैं क्या कुछ दक्षिणा, बोले हम नहीं छूते नहीं लेते। अब इतने मोटे मोटे हो और पैदल चलते हो फिर भी मोटापा नहीं गया, और लेते नहीं तो कैसे रहते। तो मेरे कोई बात जची नहीं उनकी, नहीं लेते नहीं छूते। तो मैं जानबूझकर थोड़ा अनजान हुआ, अब मैं गाड़ी में बैठने गया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं लेते, इनको दे दो सेवक को। उनका जो नौकर था, उनकी पालकी उठाने वाला अथवा उनकी लारी चलाने वाला जो सेवक रहते हैं साथ में, उनको दिला दिया। अब उनको दिलाकर कहे कहां जाएगा मुझे पता नहीं क्या। लेकिन राजसी करता ऐसे ही एक साध्वी पुमती बांधती थी हम नहीं लेते, लेकिन वो जब मरी तो बाप रे बाप कितने हजार साबुन उसकी अलमारी से निकले। ऐसे ही गंगा किनारे भगत कुछ नहीं लेते, पेंशन आती खाते कपड़े रख लो सेवा करेंगे। यहां बड़ी ठगी होती, लोग कपड़े रखते। ऋषिकेश की बात है, गीता भवन में उसने अलमारी ले रखी थी और कुछ अपना बना के खाता होगा जो भी होगा। लोगों के कपड़े देखभाल करने की सेवा करता। लोग कपड़े रखते नहाने के लिए, जब घड़ी उतार के रखते तो फिर देखते कि घड़ी गायब। बोले बाबूजी यहां तो कोई आया नहीं, हरामी कहां गए, इधर गए उधर गए। वो बाबूजी बेचारे जाते, वो आदमी के अलमारी से 1.5 किलो घड़ियां मिली, लेडीज घड़ियां बड़ी घड़ियां। तो जब तक संसार सच्चा लगता है और कोई चीज वस्तु पाकर रस आता है तब तक करता राजसी और तामसी रहेगा। अगर परमात्मा सच्चा लगता है और संसार स्वप्न लगता है तो फिर परमात्मा रस पाने के लिए आपके पास राज्य होगा तो भी आपको लगेगा कि ये बंधन है। धन होगा तभी भी लगेगा ठीक है, और निर्धनता होगी तो ठीक है कोई बड़ी। सच्चा धन परमात्मा सुख है। शबरी भीलन जैसी गरीबी में भी आप सच्चा रस पा सकते हैं, और जनक जैसे वैभव में भी आप सच्चा रस पा सकते हैं। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि सच्चा रस चाहिए, सच्ची शांति चाहिए। तो ये उद्देश्य सत्संग से ही तो पता चलेगा, नहीं तो हम न जाने कितने कितने ऊंचे तरंगों पर जवानी पर नाचते हैं। पढ़ लिख लूं मैं व्यापारी बनूंगा, दूसरा सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तीसरा इंजीनियर बनने के तरंग पर नाचना चाहता है, चौथा नेता बनना चाहता है, तो पांचवा आईएएस ऑफिसर बनूंगा। विद्यार्थी बेचारे न जाने कितने कितने सामुद्रिक ऊंचे ऊंचे तरंगों पर नाचना चाहते, और कोई आईएएस बन गया, कोई आईएएस से भी प्रमोटेड हो गया, कमिश्नर बन गया, डायरेक्टर जनरल बन गया। मेरा चेला है, पहले डिप्टी कलेक्टर था, फिर कलेक्टर हुआ, फिर कमिश्नर बन गए। लेकिन आप पूछो क्या हाल है, कुछ नहीं। न जाने कितने ऊंचे ऊंचे तरंगों पर नाचने का इरादा किया था, आप देखो तो कुछ नहीं। क्या मिला, समय बीत गया, घुटनों का दर्द मिला, बुढ़ापा मिला, पेंशन मिली, दिन काट रहे रिटायर होकर। रस टिका नहीं जयराम जी की, क्योंकि नकली रस था। मैं कलेक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अमीर हूं, लोगों ने थोड़ी वाहवाही की, थोड़ा कुटुंब का संयोग जन्य सुख मिला, नकली सुख मिला। जीवात्मा असली है और नकली सुख से कब तक सुखी रहेगा। शरीर नकली है, शरीर मर जाता है, लेकिन शरीर के बाद भी जीवात्मा रहता है। संसार परलय हो जाता है तो परमात्मा रहता है, तो परमात्मा परलय के बाद भी रहता है, जीवात्मा मरने के बाद भी रहता है, तो परमात्मा भी अमर है, जीवात्मा भी अमर है। तो अमर रस जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जीव भटकता रहेगा 84 के चक्कर। नारायण हरि, नारायण हरि। अपन चलते हैं फिर वही जहां कृष्ण ले जाना चाहते, चलोगे ना? तो राजसी करता अपने अहंकार और स्वार्थ को लेकर ही कर्म करेगा। तामसी करता आ गया बस मूड और कर डाला, फिर चाहे सिर पे पैर रख के भागने पड़े। इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, काटो मारो, और हुई फायरिंग तो सिर पर पैर रख के भागे। जयराम जी की, ये ऐसे है, वो ऐसे है, धर्म खतरे में, मारो काटो धर्म। अरे राम राम राम, जरा सी अक्ल का उपयोग करें। अगर मुसलमान सोचता कि हिंदू को मारेंगे काटेंगे तो शांति होगी, अथवा हिंदू मर जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अथवा मुसलमान मर जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, दोनों बेवकूफी की बात करते। अरे पूरी मानव जात का शत्रु है मच्छर, सभी मिलकर आज तक मच्छरों को नहीं मिटा सके, तो क्या हिंदुओं को मिटा सकोगे पागल? सारी मानव जात मच्छरों की एंटी है, मच्छरों के आतंक से सब आतंकित है, और सब एक स्वर से उनको मिटाने में लगे। क्या धरती के मच्छर मिटा सके हो बुद्धू सिंह? मार काट आतंक करो, इनको मिटाओ उनको मिटाओ। नहीं मेरे भैया, तुम अपनी नासमझी को मिटाओ तो तुम्हारा मंगल हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। मच्छरों को मिटाने के लिए आए हाय, न जाने कितनी कितनी दवाइयां, कितनी कितनी धुआं बनाने वाली मशीनें, मशीनें बनाने वाली फैक्ट्रियां बन बन कर मिट गई, लेकिन धरती से मच्छर नहीं मिटा। क्या ख्याल है, मिटा क्या? हमारे यहां भी है, कुटिया में भी है, तो तुम्हारे घर नहीं होंगे क्या? जब धरती से मच्छर तुम नहीं मिटा सकते हो सब मनुष्य मिलकर, तो कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर आतंक करके इनको मिटा देंगे, अथवा वो कहेंगे हम आतंक को मिटा देंगे, हम उसको मिटा देंगे। जब तक तमस रहेगा, रजस रहेगा, तब तक ये डिम डिम चलता ही रहेगा। जयराम जी की, आतंक से सावधान रहना ठीक है, लेकिन बेवकूफी नहीं मिटी तो आतंक कैसे मिटेगा? ना समझी नहीं मिटी तो आतंक नहीं मिटेगा। जितना हो सके एक दूसरे की ना समझी मिटाए। जो आतंक में भर्ती होते उन बच्चों में ना समझी होती, तभी तो भर्ती होते। ना समझी तमस है, सूझबूझ बढ़ा दे। तो एक राजसी कर्म होते हैं, दूसरे तामसी कर्म होते हैं। उनमें तो ढंग धड़ाई नहीं होता, वे तो पद पद पे बिचारे ठोकरे खाते हैं, तामसी करता। तीसरे होते सात्विक कर्म। श्री कृष्ण कहते 18वें अध्याय का 26वां श्लोक, सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः मुक्त संगो अहम अनवादी धृति उत्साह समृतता सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विकम उच्यते। जो कर्ता राग रहित अन अहमवादी धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहकर कर्म करता है वह सात्विक करता है। उसके कर्म से वो और उसके संपर्क में आने वाले सुखी होंगे। जैसे श्री राम का राज्य सात्विक करता राम है, कृष्ण सात्विक करता है युद्ध जैसे घोर कर्म भी, जनक सात्विक करता है और भी कई सात्विक करता है। रामकृष्ण कहते हैं दूध अगर पानी में डालोगे तो दूध पानी से मिल जाएगा, दूध पानी जैसा हो जाएगा, लेकिन दूध को जमा कर मथ कर फिर अगर मक्खन पानी में डालोगे तो तरेगा। ऐसे ही मनुष्य जीवन को संसार में डालोगे तो संसार आपको संसारी बनाकर घोल मोल कर तुच्छ बना देगा। जैसे दूध नाले में डाला तो क्या दूध बचेगा? क्या दूध नाली नाले में या नदी में डाला तो क्या दूध बचेगा? क्या ऐसे अपने को आप संसार में डालोगे तो क्या अपना चैतन्य बचेगी? क्या अपना रस बचेगा? क्या आप संसारी हो जाओगे? जरा जरा बात पे दुख आपको डंक मारेगा, जरा जरा बात पे चिंता आपको चूरा करेगी, जरा जरा बात पे भय आपको डराएगा, जरा जरा बात पे बीमारी आपका गला रो देगी, और जीवन भर सुकड़ाते दबते तपते खींचते आखिर मरना ही पड़ेगा, और चीखते चीखते मरना पड़ेगा फिर जमदूतों के डंडे। आप अपने जीवन रूपी दूध को संसार रूपी नाले में ना डालो लाला, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन बड़ा कीमती है, मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है। ये जय भय मत बोलो, सत्संग सुनो, मुझे प्रसन्नता होगी। आप जय बोलकर मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, आप अपना भला करके मुझे प्रसन्न कर लोगे। आप अपना भला करने की बात पक्की कर लो। भगवान सबका मंगल हो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। असत बुद्धि से असत संसारम को सत लग रहा है, असत बुद्धि से असत भोग हमें सत लग रहे हैं, असत बुद्धि से असत देहम को सत लग रहा है। देव तू सत बुद्धि दे, परमेश्वराय नमः, विश्वेश्वराय नमः, देवेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम सब मंगल मंगल देखे, हम सब सब में हित कर देखे, मंगलमय देखे, सुखमय देखे। प्रार्थना से हृदय द्रवीभूत होता है, प्रार्थनीय परमात्मा की सम्मति मिलती। गांधी जी कहते मेरे जीवन में अगर प्रार्थना न होती, राम नाम न होता और गीता का आसरा न होता तो मैं कहीं का न रहता। एक बार चरखा दंगल देखने गए गांधी जी और थके मांदे आए थे और जरा सा बैठे और नींद आ गई। रात को 2 बजे उठे और अपने को कोसा के एक में कितना अभागा, जिसने सूर्य दिया चंदा दिया जल दिया थल दिया अक्कल दी उस परमेश्वर की प्रार्थना के बिना मैं सो गया था। रात को 2 बजे आंख खुली, भगवान से क्षमा याचना की, मैं तुम्हारी प्रार्थना के बिना सो गया था, मुझे बख्शो, मेरे बख्शनहार तू बख्श। आप भी कृपा करके भगवान को प्रार्थना करो कि दिन भर तूने चेतना थी कर्म किए, बेवकूफी से अहंकार बोलता है मैंने किया, लेकिन मेरा अपना क्या है? क्या हाथ मेरे हैं? क्या पैर मेरे हैं? क्या आंख मेरी है? ये सब पंच भौतिक वस्तुएं हैं, तेरी सृष्टि की दी हुई है और चेतना भी तेरी दी हुई है। मैं बेवकूफी से मान रहा था मैंने ये काम किया, मैंने इतनी दुकानें चलाई, मैंने इतने घर चलाए, मैंने इतनों का भला किया। प्रभु ये मेरी भ्रांति तू ले लेना, तेरी सत्ता से जो अच्छा काम हुआ वो तेरी कृपा है, मेरी वासना से जो मंदे काम हुए तू मेरे को बख्श ले। देव अब मैं तेरी गोद में आ रहा हूं, सत्यम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि, प्रभुम शरणम गच्छामि। ओम आपकी नींद तो नींद हो ही जाएगी लेकिन 6 घंटे की बंदगी भगवान मान सकते हैं अगर आप भगवान की शक्ति, भगवान का वचन है तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारता, तू सब भावों से मेरी शरण आ जा, मुझ अंतर्यामी ईश्वर की शरण। शरीर से जो करे, मन से जो कल्पना सोचे विचारे, बुद्धि से जो निर्णय करे, तू मेरी शरण आ, क्योंकि वास्तव में तेरा मेरा मेल है, तेरा और संसार का मेल नहीं है बेटा। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहां, कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का वंशज है, तू यहां कब तक रहेगा भैया? देवियां बेटियां माताएं कब तक यहां रहोगी? भैया लोग आप कब तक रहोगे? आपका घर परमात्मा है, आपका मित्र परमात्मा है, आपका सखा परमात्मा है, आपका सुहृद परमात्मा है, आपका रक्षक परमात्मा है, आपका रसदाता परमात्मा है, आपका शांतिदाता परमात्मा है, आपको सुखदाता परमात्मा है। आप उसी की प्रीति बढ़ाइए, उसी का आश्रय लीजिए, दूसरों पर दोषारोपण की मति को बंद कर दीजिए। दोषारोपण ना करो किसी पर, मुझे तेरा आसरा नहीं, फलाने का आसरा था इसलिए उसने ऐसा किया, उसकी बड़ी कृपा है धोखा दिया, संसार धोखे का घर है, फलाना दुख आया ये तेरी कृपा है कि दुख से भी दुख देकर तू सावधान करता है, सुख देकर तू उत्साहित करता है, तेरी कैसी लीला है प्रभु। गोविंद देव परमात्मा नारायण हरे। लोगों को धर्म का भी अहंकार हो जाता है, कभी कभी तो पाप का भी अहंकार करते हैं। मैंने 4 मर्डर किए, तू तो अभी सिक्कड़ है, खाली एक पैर तोड़ के आया है, आधा मर्डर करके आया है, मैं तो 4 मर्डर वाला बैठा, तू तो 6 महीने की सजा है, मैं तो 20 साल भुगने को आया हूं, 14 साल पूरे भी कर लिए। अहंकार न जाने क्या क्या करवटे लेता, धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, कोई काम किया उसका अहंकार, जिसे करता है उस परमेश्वर से दगा कर रहे हैं दिन रात। ये अहंकार दगा कराता है और भगवान की शरणागति व्यक्ति को सच्चा बनाती है। प्रभु ज्योतिद भावे सो भलिका, मेरो चिंत्यो होत नहीं, प्रभु तेरो चिंत्यो। आपको हम कसम डाल के पूछ सकते, क्या आपकी सभी इच्छाएं कभी पूरी हो गई क्या? चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वर्ल्ड मंत्री हो, सभी इच्छाएं किसी बंदे की पूरी नहीं होगी संसार में। भगवान राम भी बंदा हो गया है तो राम की भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, कृष्ण की भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध हो, लेकिन युद्ध में कृष्ण को भी खींच जाना पड़ा। भीष्म पितामह चाहते हैं कि विजय तो पांडवों का हो, पांडवों के प्रति हृदय ढला हुआ है, फिर भी युद्ध कौरवों के पक्ष में आकर कर रहे हैं। कैसी विवशता है संसार की, जयराम जी की विवशता है उस पुरुष की, धर्मात्मा थे भीष्म। युधिष्ठिर के प्रति स्नेह है और पांडवों के विरुद्ध में युद्ध करना पड़ रहा है, पांडवों की भलाई चाह रहे और युद्ध करना पड़ रहा है, विवशता है। आप शरीर लेकर आए तो कोई न कोई विवशता, कोई न कोई आपकी सब इच्छा किसी की पूरी नहीं होगी, पक्का समझो, और सभी इच्छा किसी की अपूर्ण नहीं रहेगी, कई इच्छाएं पूरी होती और कई नहीं होती। तो इससे सिद्ध होता है कि आपसे कोई समर्थ सत्ता है जयराम जी की, नहीं तो आप सब इच्छा पूरी करके दिखाओ, अथवा कोई भी पूरी ना हो ऐसा करके दिखाओ। तो सभी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती और सभी इच्छाएं किसी की फेंकी नहीं जाती, तो कोई सत्ता है ना। आप नहीं चाहते वो घटना भी घटती है, और कभी कभी आप चाहते वो भी घटता है। तो सब आपका चाहा नहीं होता, ये बात पक्की हो गई। बस आप आ जाओ ना कबीर के पास, मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि कहे मैं रहूं निश्चित। अपने तरफ से पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन फिर जो भी कराएगा तेरा बाणा मीठा लागे, चले जाओ नानक जी के पास अथवा कृष्ण के पास आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझ परमेश्वर में शांति पाओ। तन से जो करो, मन से जो करो, बुद्धि से जो निर्णय करो, मुझ परमेश्वर। मंत्री लोग अपने हृदय पर हाथ रखो, 15 साल है, फिर भी अभी भी मन करता है कि फिर से मंत्री बन जाऊं। वासना का अंत कब होगा? नश्वर की मांग का अंत कब करोगे आप? एक जगह अप्रैल फुल मनाया जा रहा था, सबसे बड़ा जो झूठ बोलेगा उसको सिल्वर का कपड़ा भी मिलेगा। किसी ने कुछ झूठ, किसी ने कुछ झूठ बोले, शाम तक निर्णायक निर्णय नहीं कर पाए। आखिर एक नेता आ गया, बोले अरे झूठ बोलने के लिए इतनी मेहनत करते हो, कैसी बात है, मैं 3-3 बार मंत्री बना, आज तक मैं झूठ नहीं बोला, और तुम झूठ बोलने के लिए मगजमारी कर रहे हो। सिल्वर का कप रखा भी देते हुए उसने हाथ जोड़ लिए कि मंत्री महाराज आप ही की जीत है यहां भी। 3-3 बार आप चुनाव जीते, 3-3 बार आप मंत्री बने और आज तक झूठ नहीं बोले, इससे बड़ा झूठ तो धरती पे हो भी नहीं तो सकता है। चुनाव में भी तो झूठ बोलना पड़ता है, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और चुनाव के बाद भी मंत्री साहब घर में हो लेकिन मिलना है नहीं तो मिले, नहीं तो बोले मंत्री साहब है ही नहीं, न जाने और भी न क्या क्या करना पड़ता है। अरे बड़ा झूठ तो ये होता उसी दिन जिस दिन कसम खाते, शपथ होता है कि मैं कोई भी काम राग द्वेष और पक्षपात से रहित होकर निर्णय करूंगा। जयराम जी की, भगवान को भी दांव पे लगा के बैठ जाते, क्या ख्याल है, ये जरा बात मेरी थोड़ी कठिन लगेगी लेकिन हो वो ही रहा है। कसम की विधि पर बड़ा झूठ तो उसी दिन शुरू हो जाता है, भगवान को भी बेच के रख देते पब्लिक के सामने, मैं कसम खा के, भगवान की कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के शपथ लेता हूं। शपथ विधि के दिन भगवान को कितना ठगते हम लोग, जयराम जी की। इसीलिए भगवत प्राप्ति की भूख जगी, जितना हृदय सच्चाई से जिएगा उतना सच्चे रस और सच्ची शांति की भूख लगेगी, जितना हृदय बेईमानी से जिएगा उतना नकली सुख और शांति में आयुष्य खत्म हो जाएगा। क्षमा करना, हम नेताओं के विरोधी नहीं है, नेता अथवा जनता अथवा मुझे कोई गाली भी देता हो फिर भी भगवान उसका मंगल करे, मैं उसका विरोधी नहीं, वो भले मुझे मान ले लेकिन मैं अपने दिल में किसी के लिए विरोध रख के अपना दिल खराब क्यों करूं। मैं तो जहां रहता था मेरी गुफा में सांप आ जाते थे, सांपों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम हो सकता है तो मनुष्य के लिए नफरत रखूं तो मेरे हृदय को उसी समय हार्ट अटैक हो जाना चाहिए। मैं मनुष्यों के लिए नफरत रखूं, किसी भी जाति, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पारसी, किसी के लिए भी मेरे हृदय में नफरत हो तो भगवान अभी हार्ट अटैक हो जाओ, चल दो बस, काहे को अपना दिल बिगाड़ना। रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोश, रक्षा करो रक्षा करो, हृदय कोश की रक्षा करो। धन कोश की रक्षा कोई बड़ी बात नहीं, हृदय कोश की रक्षा करो, हृदयेश्वर खुद प्रकट हो सकता है, ऐसा हृदय है आपका, इसलिए हृदय को बिगाड़ो मत। आज तो बेशर्माई का भी पराकाष्ठा है, चिपक के फोटो निकाल रहे हैं आपके बच्चों पर और नए जनरेशन पर, क्या फर्क, कितना बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोग तो ऋषिकेश में हमने देखा, तीर्थ करने जहां ब्रह्मचर्य पालने की सीख मिलती है, उस जगह पर लक्ष्मण झूला पर खड़े रहेंगे, पत्नी को आगे रखेंगे, खुद पीछे हो जाएंगे और यहाँ, अरे बेशरम, कुछ तो तुम ख्याल कर। हम गए थे हरिद्वार, ये हरिद्वार का फोटो है, घर में लगाएंगे। तुम्हारे छोरे और छोरी की सत्यानाश करने गए थे क्या हरिद्वार का फोटो लाकर? ऐसे सत्संग नहीं कर सकते, जिनको सत्संग नहीं है वो ऐसा किए बिना रहते नहीं, इसलिए सत्संगी में जो सूझ बूझ आती है वो गजब की है। आप किसी सत्संगी के घर चले जाओ, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटे आय का हो, पैसे वाले का, चाहे महीने में 1000-1500 आय का घर हो, चाहे महीने में 50,000 के आय का घर, चाहे 5,000, लेकिन आप उस घर में जाएंगे जो सत्संगी दीक्षित है, उसके घर में जाएंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ प्रेम मिलेगा, कुछ नम्रता मिलेगी, कुछ सुहृदता मिलेगी। और जो निगुरा है उसके घर में जाओगे तो कुछ न कुछ अकड़ धकड़ और कुछ न कुछ ऐसी बात मिलेगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये किसी गुरु का चेला है कि निगुरा है, तुरंत पता चल जाएगा। सगुरे के घर जाने में और निगुरे के घर जाने में तुरंत पता चल जाएगा, अगर थोड़ी भी बुद्धि है तो, चाहे कितना भी सगुरा अमीर हो वो रस नहीं आएगा। जो सगुर निगुरा कितना भी अमीर हो, कितना भी प्रसिद्ध हो और कितना भी होशियार हो, फिर भी उसके घर में जाने से वो रस नहीं आएगा जो सगुरा के घर में जाने से रस आएगा। लेकिन वो रस शाश्वत नहीं है, हाँ देखना, गलती मत करना, वो भी संसार का ही कुछ सज्जनता का रस है, साधक बने का रास है। ईश्वर के लिए जैसे राम तीर्थ रो रो कर फुट फुट के रोते थे, और रात को सोते तो नींद में भी कभी तू कब मिलेगा, हे गोल, ए गोलू, कृष्ण को कभी गोलू बोलते थे, टिकटिकी लगा कर देखते, तू सबके हृदय में सब जगह। और गोलू बंसी बजाकर बछड़ों को और गायों को तो प्रेम देता, और मेरे को क्या नचाता है, रे गोलू कब मिलेगा। एकांत में चला जाऊं तब तुम मिलेगा, अंतन गुफा में चले गए हिमालय की कुछ छुट्टियों के दिन, रामनाथ किसान रसोई दे जाता था, महाराज भोजन कैसा है, वो चाहता था कि महाराज के क्या, भाई तू बढ़िया सेवा करता है, महाराज के पास गोलू बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाता है गोलू, बोले महाराज भोजन मैं लाता हूं, अरे बोले जा गोलू, गोलू लाता है, गोलू ख्याल। उस किसान युवक को लगा, 30 साल का था, कि अब देखें इनको कैसे गोलू खिलाता, इधर तो कोई आ नहीं सकता, मेरा गांव तो मैं ही हूं जो ले आता हूं। राम तीर्थ को बोला, महाराज मुझे किसी काम से जाना है, कल मैं नहीं आ। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो महाराज आपके भोज में, अरे बोले वो तो गोलू का ठेका है, तो कहे को चिंता करता। बोला महाराज फिर भी आप भूखे रहेंगे? बोले नहीं नहीं, गोलू ने सारी दुनिया बनाई तो गोलू ही खिलाने पिलाने की सब व्यवस्था करता है, तू मैं क्या करता हूं। उस किसान ने देखा कि अब देखे इनका गोलू कैसे खिलाता है, और रामनाथ किसान, यहां कोई रामनाथ तो नहीं है भाई, अपने तरफ मत खींचना, वो किसान था, तुम टोपी वाले हो, तुम्हारी कथा नहीं है। वो रामनाथ किसान 30 साल का, सुबह 11 बजे भोजन लाता था, 10 बजे छुप कर बैठा के इनको 11, 12, 1, 2, 3 तक कौन खिलाता है देखता हूं। लेकिन 11 में कुछ मिनटें बाकी थी और एक वृद्धा आई, सिर पर गरम दूध का बर्तन लेकर, महाराज महाराज ले लो प्रसाद। बोले मां किसके लिए आए? बोले तुम्हारे लिए आए। कहां से आए? बोले दूर गांव है, हमारी गऊ ब्याही इतने दिन के बाद, फिर हम घर का उपयोग करते हैं तो घर में उपयोग करें, इससे तो पहले संत उपयोग करें। इसलिए महाराज कल सोच रही थी, रात को स्वप्न आया तुम यहां रह रहे हो। अच्छा गोलू, सपना देखकर लाया है? ठीक। भरपेट दूध पिया, शक्कर महाराज जितनी चाहिए डालो। हाँ कह, दूध में ज्यादा शक्कर नहीं डालनी चाहिए और जल्दी जल्दी गड़गड़ा के दूध नहीं पीना चाहिए। चुस्की लेते लेते जितना पीना चाहिए, और दूध तो उनका प्रिय आहार था और दूध में तो सारे विटामिन आ ही जाते। कल हमने दोपहर को दूध का ही भोजन किया था, कुछ नहीं दूसरा। महाराज या दूध बच्चा माई बोलती, महाराज रख लो शाम को काम आएगा। बोले शाम को गोलू लाएगा जिसको गरज होगी। तो रामनाथ सुन रहा था, बुढ़िया कहती महाराज रख लो रख लो, नहीं नहीं ले जाओ। उसके अंतरात्मा नालत देने लगी कि देख तू खिलाता है कि मैं खिलाता हूं। राम तीर्थ के चरणों में आया, महाराज मैं छुप के बैठा था, आपको तो गोलू खिलाता है, मेरी गलती हो गई कि मैं खिलाता हूं। बोले तेरी गलती नहीं, सारे संसार की गलती के सबका भरण पोषण वो गोलू करवाता है। बोलते मैंने बच्चों को खिलाया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया। अरे तुम नहीं होगे तभी भी पढ़ेंगे लिखेंगे खाएंगे। करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। मेरे पिताजी बुढ़ापे में मेरी चिंता कर गए थे कि बड़ा बेटा तो अपने पैरों पर ही, ये बेचारा आंसू आंसू बल 10 साल का, भगवान मेरे को 5-10 साल छोड़ दे, अपने पैरों पे आ जाए तब मुझे ले जाना। लेकिन भगवान उनकी ममता में थोड़े फंसते, भगवान तो हम 11-12 साल के थे, उनको लेना था तो ले गए। तो क्या मुझे अपने पैरों पे थाउमल ने रखा कि उसने रख दिया है? जयराम जी के नाहक चिंता कर रहे थे, बेटा छोटा है बेचारा, भगत है भोला है बेचारा, सीधा है ऐसा है वैसा है, तू मेरे को बश्क दे। जब मर रहे थे तो बड़े भैया को बुलाया, मां से पूछते कि आज तिथि कौन सी है? बोले आज 7 तम है। कि अरे अभी 4 दिन निकालने हैं, और 11-10 की रात हुई। बोला अभी 11 नहीं हुई। बोले कल है। अच्छा तो 11 के सुबह को 3-4 बजे बुलाया, बड़े बेटे को जगा, छोटे को बेचारे को नहीं जगाना, वो दुख देख नहीं सकेगा। लिपण करवा दिया, गीता पढ़ो, मेरी माँ को मेरे पिता हाथ जोड़ते हैं कि जो भी कुछ लेने देने में करने, कभी कुछ हाथ भी लग गया कभी तू मेरे को माफ कर दे, मैं तेरे को माफ कर देता हूं, ऐसा करके आंखें मूंद के जा रहे थे। और इतनी दया की, बेचारे बेटे को मत उठाना, हम तो नहीं उठे, वो तो चले गए, लेकिन हम कंधा देने को गए, और कंधा दे के जब बबू बकबूक हो रहा था तो हमने कहा आखिर तो यही है हाल तो शरीर का। तो फिर हम रोज नहीं तो कभी कभी उसी शमशान में जाते थे। बड़े लोगों को जलाया जाता रहा, अपन 10-11 साल के तो यहां दफनाएंगे, मन को बोलते थे कि यहां आएगा या तो वहां आएगा, बोल क्या ख्याल है। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। ईश्वर की और पुस्तका बार बार पढ़ो। हम तो शमशान में जाते थे बार बार तो अकल जरा ठिकाने रही। आप ईश्वर की और पढ़ो तो अकल को ठिकाने लाने में आपको मदद मिलेगी। ईश्वर की और पुस्तक है, उसमें वही यात्रा कराई गई। इन महान आत्माओं का, भगवत प्राप्त महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन करने की ताकत इस जीव में नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं तो आपके कान पावन होते, मेरी जीभ पावन होती, हृदय पावन होता है। अगर अपना मंगल चाहो तो बस भगवत प्राप्त महापुरुषों का, भगवत जनों का जीवन चरित्र सुनो, पढ़ो। बढ़ाओ, मन भगवान में लगेगा। ओम शांति, ओम शांति। क्या आप चाहते हो? आप संसारी होकर ही मरना चाहते हो कि साधक होकर, भगवान के भक्त होकर भगवान में मिलना चाहते हो? अपने मन से पूछो। क्या बेटे बेटियों की चिंता था उमल जैसी करके चिंता लेकर जाना चाहते हो कि ईश्वर से हो एकाकार होकर जाना चाहते हो? चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा खिलाए। ये कबीर का वचन है, इसमें मैंने थोड़ी मिलावट कर दी। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, संत बेचारा क्या करे कहां तक कथा सुनाए। शांति प्राप्ति के लिए सच्चाई से, अहिंसा से, क्षमा से, दानशीलता से अपने हृदय को भर देंगे तो भगवत शांति प्राप्त होने में बड़ी सहायता मिलेगी। जो सात्विक कर्ता बनते उनके हृदय में भगवत प्राप्ति की प्यास जगती, जो राजसी कर्ता बनते उनकी भोग की वासना और बढ़ती है, जैसे यज्ञ में अथवा अग्नि में घी की आहुतियां देने से आग भड़कती है। शरीर तो बुढ़े बुढ़िया बन जाता है लेकिन विकार अभी भी नचाते रहते। जीभ की लोलुपता नचाती है, सेक्स की लोलुपता नचाती, देखने की घूमने की लोलुपता नचाती है। वो आदमी कितने दुखी है कि घूमने की ताकत नहीं और घूमने की वासना बनी है, काम भोगने की ताकत नहीं और काम की वासना छुपी है। कितना लाचार जीवन है। पद पे पहुंचने की ताकत नहीं और कुर्सी पर पहुंचने की वासना बनी है और वासना लेकर मर रहा है बेचारा। कैसा जटिल जीवन लेकर जाता है ये। कितना दया दयनीय जीवन है कि देखने की शक्ति क्षीण हो रही है, देखने की वासना नहीं मिटी। सुनने की शक्ति क्षीण हो रही है, अभी तक सुनने की वासना नहीं मिटी। भोग भोगने की शक्ति क्षीण हो रही है, अभी भोग की वासना नहीं मिटी। तो आप तामसी कर्ता और राजसी कर्ता में अपना आयुष्य तो नष्ट नहीं कर रहे हैं। करने की शक्ति क्षीण हो रही है लेकिन अभी करने की वासना नहीं मिटी। पार्टनरशिप करो, दुकानदारी करो, फलाना करो। अरे जिससे किया जाता है उसमें कब आओगे लाला लाली? जिससे देखा जाता है उसको कब देखोगे? जिससे सुना जाता है उसको कब सुनोगे? जिससे मिला जाता है उसे कब मिलोगे? क्यों आयुष्य खपा रहे हो? अपना मनुष्य जीवन रूपी पवित्र दुग्ध संसार रूपी बातें नाले में कब तक ढोलोगे? ध्यान का दधि मिलाओ, समय रूपी दूध को दही बनाओ। साधन भजन से मथो, भगवत अनुभव रूपी मक्खन निकालो, फिर संसार में छलका दो। नहीं डूबेगा, तैरता हुआ पार हो जाए। आप डूबने के लिए संसार में नहीं आए हो। माताओं के गर्भों में जाने के लिए संसार नहीं है तुम्हारा।